अपने भीतर के जखीरे को उभारने की कला है अध्यात्म। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है आध्यात्मिकता? देवियों भाइयों,
आज की दुनिया नासमझों की है।
कैसे?
जो आदमी नामवरी के लिए, तारीफ के लिए, राजसत्ता के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए और दूसरी चीजों के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करते रहते हैं, मित्रों, मैं उन्हें समझदार कैसे कहूंगा?
मैं तो नासमझ ही कहूंगा।
आज की दुनिया यही है। आज की आध्यात्मिकता का हमारा उद्देश्य आदमी की नासमझी में समझदारी का समन्वय करना है।
हमारा युग 45 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, जब मेरी नासमझी में समझदारी का समन्वय किया गया। तब मैं छोटा नासमझ मनुष्य था, बेअक्ल, इच्छाओं का मारा, वासनाओं का मारा, तृष्णाओं का मारा, अभावों का मारा, असंतोष का मारा, एक गया गुजरा साधारण मनुष्य था।
एक दिन ज्ञान की अमृत की एक धारा की एक किरण मेरे पास आए और न जाने कैसे कैसे हुआ। मेरे गुरुदेव ने जो किया, मैं चाहता हूँ कि आपको बुला करके आपके साथ भी वही सलूक करूँ जो मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ किया था।
मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान की धारा से परिचय कराया।
उन्होंने यह परिचय कराया कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो मनुष्य के जीवन में समाविष्ट हो जाती है। जीवन में जो ज्ञान व्यवहारिक धरातल पर उतारा जा सकता है, उस चीज का नाम आध्यात्मिकता है।
भावनाओं का स्तर ऊंचा उठे। मित्रों,
मुझे पहले यह मालूम था कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो पूजा की कोठरी में कुछ थोड़ा सा टंट खंट करने के लिए काम में लाई जा सकती है। पहले मेरा ख्याल था कि अगर माला घुमाई जा सकती है, पूजा की जा सकती है, रामायण पढ़ी जा सकती है, गीता पढ़ी जा सकती है, भगवान को चावल चढ़ाए जा सकते हैं, रोली चढ़ाई जा सकती है, आरती उतारी जा सकती है, तो आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन पीछे मैंने अपना ख्याल बदल दिया और मेरी अक्ल एवं समझ में जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया। जब मुझे असलियत मालूम पड़ी तो मैंने कुछ और ही बात पाई।
मैंने देखा कि जो भी कर्मकांड हैं, उपासनाएं हैं, उन सबका मतलब और उद्देश्य एक ही है, और वह उद्देश्य यह है कि मनुष्य का अंतरंग और मनुष्य का हृदय, मनुष्य की जीवात्मा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और मनुष्य की भावनाओं का विकास किया जाए।
भावनाओं का स्तर घटता है तो आदमी घटिया ही बना रहेगा, वह कभी बढ़ नहीं सकता, और अगर मनुष्य की भावनाएं ऊंची हैं तो उसका व्यक्तित्व ऊंचा होगा।
ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी होगा, वह जहां कहीं भी निवास करता होगा, उसको लौकिक सुविधाएं भी मिल रही होंगी और पारलौकिक भी, और अगर मनुष्य का घटिया वाला व्यक्तित्व है तो उसे जीवन में असुविधाएं और कठिनाइयां पैदा होंगी, आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
आया मर्म समझ में?
इसलिए मित्रों,
जब मुझे सिखाया गया तो कर्मकांडों और पूजा उपासना का सारे का सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया और मेरे रोम रोम में समा गया।
तब मैंने पाया कि जो कुछ भी हमको पूजा उपासना के क्रिया कृत्य करने हैं, उनके माध्यम से हमको अपने व्यक्तित्व, अपनी विचारणा, अपनी भावना की क्रिया पद्धति का परिष्कार करना चाहिए।
फिर क्रिया कृत्यों के रहस्य मुझे मालूम पड़े कि भगवान के चरणों में गुलाब के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। यह रहस्य मेरी समझ में आ गया कि खिलता हुआ गुलाब, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कराता हुआ गुलाब, सुगंध से भरा हुआ गुलाब ही इस बात का अधिकारी है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए। गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के वन में पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदी जगहों पर रहता है, और अगर गुलाब का फूल सूंघने को मिल जाए तो फूल कर कुप्पा हो जाता है। गुलाब के फूल से उसका क्या लेना देना? उसके लिए सारी की सारी दुनिया में गुलाब ही गुलाब तो खिले हुए हैं। वह आपका गुलाब लेकर के क्या करेगा? गुलाब की तरह खिलें, सुगंध फैलाएं।
मित्रों,
भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उसकी किसी जरूरत को पूरा करना नहीं है, वरन अपने मन के ऊपर एक छाप और एक संस्कार डालना है कि यदि मनुष्य का जीवन एक गुलाब के फूल के तरीके से खिला हुआ होगा तो भगवान का प्यार और भगवान की समीपता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या हमने गुलाब के फूल की तरह खिलने की कोशिश की? क्या हमने अपने आप को सुगंधित बनाया? क्या अपने आप को हंसता हुआ आदमी बनाया?
क्या अपने आप को संतुष्ट आदमी बनाया? क्या अपने आप को खिलता खिलाता हुआ आदमी बनाया?
क्या अपनी खुशी से दूसरे आदमी को खुशी देने का कभी प्रयास किया? अगर हमने ऐसा किया हो तो समझना चाहिए कि हमको फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य मालूम हो गया। अगर इतनी सी बात समझ में न आई तो आपके फूल चढ़ाने से क्या फायदा हो सकता है, मैं नहीं जानता। इसी तरीके से हमने भगवान पर चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किए, फिर भी इसके मतलब नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है कि जहां भगवान रहते हैं वहां बदबू बनी रहती है। यदि उनको हम चंदन लगा देंगे तो भगवान जी का काम चल जाएगा, चंदन से गुण आ जाएं।
मित्रों,
भगवान जहाँ रहता है वहाँ खुशबू की सुगंध की कोई कमी नहीं है। वहाँ बहुत सेंट बिखरे हुए हैं और वहाँ बहुत धूप बत्तियाँ जलती रहती हैं। वहाँ हम चंदन नहीं भी चढ़ाएं तो भगवान जी को कोई कष्ट और तकलीफ होने वाली नहीं है। असल में चंदन चढ़ाने का मतलब यह है कि हमारा जीवन वैसा ही शांत और सुगंधित हो कि जहाँ कहीं भी लगाया जाए वहाँ तरावट व सुगंध पैदा कर दे। उसके समीप में जो पौधे उगे हुए हों उन पौधों में अपनी खुशबू बिखेर दे और अपने समीप रहने वाले व्यक्तियों को वैसा ही सुगंधित बना दे जैसा कि चंदन अपने समीप वाले लोगों को बनाता रहता है। चंदन के आसपास बिच्छू भी लिपते रहते हैं, सांप भी लिपते रहते हैं और डंक मारते रहते हैं, पर चंदन क्या कभी सांप के जहर से जहरीला हो गया? क्या बिच्छू के जहर का असर उस पर आया?
नहीं।
आदमी भी चंदन के तरीके से अपने गुणों को बढ़ा सकता है और यह समझ सकता है कि हमने चंदन चढ़ा करके इसके मकसद को और उद्देश्य को पूरा कर लिया।
नैवेद्य व दीपक का वास्तविक अर्थ।
भगवान को हम शक्कर चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं।
मिठाई चढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान को खटाई नापसंद है, मिर्च नापसंद है, नींबू नापसंद है।
इसका मतलब यह भी नहीं है कि भगवान जी काली मिर्च नापसंद करते हैं अथवा दूसरे जो जायके हैं वे भगवान को नापसंद हैं। मिठाई चढ़ाने का मतलब केवल एक है कि भगवान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और भगवान के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा पहुंच हो सकती है वह मिठास है। मनुष्य की वाणी की मिठास, मनुष्य के व्यवहार की मिठास, मनुष्य के क्रियाकलापों की मिठास, मनुष्य की वृत्तियों की मिठास आदि अगर चारों ओर फैलती चली जाए तो हम इस बात के अधिकारी बन सकते हैं कि हमारा जीवन और हमारी मनोभावनाएं बिना किसी रुकावट के भगवान के चरणों में चढ़ाई जा सकती हैं। इसी तरह हम भगवान के सामने दीपक जलाते रहते हैं। दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की आंखों की ज्योति कम हो गई है और उन्हें आदमी से कम दिखाई पड़ता है। आंखों में मोतियाबिंद हो गया है इसलिए उन्हें चश्मे लगवाने पड़ेंगे।
मित्रों,
भगवान जी की आंखें सही हैं और उनकी आंखों के आगे दीपक न भी जलाएं तो भगवान जी को किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी आंखें सही हैं, फिर आपके दीपक जलाने का क्या मतलब है?
जलने की तमन्ना, स्नेह का विस्तार। मित्रों,
खुद को दीपक जलाने की जरूरत होती है क्योंकि दिन में जब बादल आ जाते हैं और अंधेरा हो जाता है तब प्रकाश कम हो जाता है और घर में बत्ती जलानी पड़ती है। ठीक है, हमारी आंखें कमजोर हैं इसलिए बत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन भगवान जी की आंखें कमजोर नहीं हैं। भगवान जी के सामने आप दीपक न भी जलाएं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बिना भी वे सो सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं।
मैंने उनकी आंखों को देखा था।
फिर दीपक की जरूरत क्या है? दीपक की जरूरत केवल यह है कि हम अपने भीतर अलौकिक भावनाओं का विकास करें।
भगवान को दीपक प्यारा है, भगवान को मोहब्बत प्यारी है।
भगवान दीपक को मोहब्बत करते हैं। दीपक वह है जिसके मन में जलने की तमन्ना है, जिसके भीतर प्यार भरा पड़ा है, स्नेह भरा पड़ा है। स्नेह प्यार को भी कहते हैं। स्नेह का दूसरा अर्थ घी भी होता है और तेल भी होता है। मोहब्बत को भी स्नेह कहते हैं। जिसके भीतर स्नेह भरा हो वह दीपक है और जिसने यह नीति अख्तियार कर ली है कि मैं दुनिया में प्रकाश फैलाऊंगा, रोशनी फैलाऊंगा और अंधेरे में उजाला पैदा करूंगा और इसके लिए मैं जलने के लिए तैयार हूं। जो आदमी जलने के लिए तैयार है वह सितारे की तरह है जो रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छाया रहता है उस समय राह चलते मुसाफिरों को जो अंधेरे में रास्ता भटक सकते थे उनको अपनी छोटी सी चिनगारी के द्वारा रास्ता दिखाता रहता है।
बच्चे गाते रहते हैं, ट्विकल ट्विकल लिटिल स्टार,
हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस तरीके से छोटा वाला मनुष्य अपनी नाचीज और छोटी हस्ती को अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा इस संसार में कैसे प्रकाश फैला सकता है और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी कैसे जी सकता है, यह बात छोटा सा दीपक सिखाता है कि गरीब आदमी भी दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी जी सकता है और हजारों मनुष्यों को रास्ता दिखा सकता है। जीवन जीने की सही विधि यही है।
मित्रों,
बहुत से आदमियों ने ऐसी जिंदगी जी है।
ऐसी जिंदगी जीना भगवान की भक्ति का उद्देश्य है। इन कर्मकांडों का उद्देश्य भी यही है।
अगर यह उद्देश्य हमारी समझ में न आए और केवल क्रिया समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं इसमें हमें पूरा शक है।
इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि हमको आध्यात्मिकता के सहारे, क्रिया के सहारे, गायत्री महामंत्र के 24 पुरश्चरणों के सहारे अपने आप ही अपनी जीवात्मा का विकास करना चाहिए और विचारणाओं एवं भावनाओं का परिष्कार करना चाहिए।
विचारणाओं और भावनाओं का परिष्कार जहाँ कहीं भी जिन किन्हीं व्यक्तियों ने शुरू किया है वे छोटे छोटे, नगण्य से नगण्य, गरीब से गरीब, मामूली से मामूली आदमी भी इस संसार के महान व्यक्ति होते हुए चले गए और उन्हें भगवान की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्वर्ग तक फैलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। गरीब होते हुए भी उन्हें वे दौलतें और नियामतें और वे चीजें मिली कि जिनकी मामूली आदमी ख्वाब में भी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी चीजों का हकदार आप में से हर आदमी बन सकता है।
अगर आप लोगों को यह ख्याल आए तो आपको अपना मन, अपनी तबीयत, अपना चाल चलन, अपनी रीति नीति और अपनी जिंदगी जीने की विधि ठीक कर लेनी चाहिए।
अगर इतनी छो बात आपकी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए और आपको भगवान का प्यार ही नहीं, भगवान की दौलत ही नहीं, भगवान की कृपा भी आपको मिलती हुई चली जाएगी।
जोखिम में डालकर दुनिया का उद्धार, यह है ईश्वरीय कृपा। मित्रों,
इसी तरीके से भगवान की कृपा लोगों को मिली भी है। हर एक आदमी के लिए भगवान की कृपा, भगवान की दौलत और भगवान की मोहब्बत सुरक्षित रखी हुई है। भगवान बहुत देर से इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आदमी है जिसे मेरी मोहब्बत पाने का हक है।
कोई भी ऐसा आदमी हो जिसको कि अपना प्यार दे दूं, कोई आदमी हो जिसको कि मैं अपनी सहायता दूं।
हमेशा भगवान ने यही किया है और उन्होंने बहुत लोगों को बहुत तरह की सहायता दी है।
अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन,
दुनिया में बहुत सी बुराइयां छाई हुई हैं और बुराई का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जोखिम में डालना चाहिए और दुनिया में से बुराई को दूर करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे आप झगड़े में क्यों फंसाते हैं, यह काम तो आप किसी और को सौंप दीजिए और मुझे तो आप पूजा करने की बात बता दीजिए। इस दुनिया में सबसे सुगम काम यही है, इससे सुगम काम और कोई है ही नहीं। यह सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। आपको चरखा चलाना हो तो उसमें अकी की जरूरत है।
धागा टूट ना जाए, सूत खराब ना हो जाए, तकुवा टेढ़ा ना हो जाए और इसकी स्पीड ज्यादा ना हो जाए। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे तब कहीं धागा निकलेगा और माला घुमानी हो तो माला खटखट घुमाते जाइए। इसमें न स्पीड का ध्यान रखना, न धागे का ध्यान रखना।
यह सबसे सस्ता, सबसे कमजोर और सबसे हल्का काम है भगवान का।
भगवान के आने का उद्देश्य। अर्जुन ने कहा कि महाराज जी, हमको आप यही सस्ता काम सौंप दीजिए।
जिस तरह से 56 लाख बाबाजी आपके गंगा जी के तट पर बैठे रहते हैं और सतत सीताराम गाते रहते हैं, मैं भी गाता रहूंगा। मुझे क्या दिक्कत है, बस यही काम करूंगा और मेरा काम बन जाएगा। आप तो मुझे इस झगड़े में फंसाए मत। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुझे इस झगड़े में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं इस दुनिया में अवतार लेता हूँ तो मेरे अवतार लेने के दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य है धर्म संस्थापना का और दूसरा मेरे जीवन का उद्देश्य है दुष्टों का विनाश।
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, यही दो मेरे कार्य हैं। मैं कभी भी और कहीं भी जब कभी इस दुनिया में स्वयं आऊंगा तो इन्हीं दो कामों के लिए आऊंगा, तीसरा मेरा कोई मकसद नहीं है। और अगर मैं मनुष्य के भीतर आऊंगा तो इन्हीं दो कामों के लिए आऊंगा। मनुष्य के पास आने का तीसरा मेरा कोई और मकसद नहीं है।
मनुष्य के पास आऊंगा तो सिर्फ इस काम के लिए आऊंगा कि उसे इस काम में लगाऊं कि धर्म की स्थापना करने के लिए वह व्यक्ति पुरुषार्थ दे और अपनी सारी शारीरिक शक्ति खर्च कर डाले।
पाप और अन्याय, अनीति और अनाचार का निराकरण करने के लिए वह अपनी सारी शक्तियां खर्च कर डाले।
उसे ऐसा ही करना चाहिए। करिष्येवचन तब अर्जुन की स्वीकारोक्ति।
भगवान की बात को अर्जुन ने मंजूर कर लिया और तब भगवान ने कहा कि तू गांडीव उठा और तीर चला, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं थक गया तब? भगवान ने कहा कि मैं तुझे थकने नहीं दूंगा।
अर्जुन ने कहा कि यदि मैं रास्ता भूल गया तब? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा।
अर्जुन ने कहा कि यदि मेरी हार हो गई तब?
श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरा काम करूंगा। भगवान आगे आगे रथ बढ़ाते चले जा रहे थे और अर्जुन गांडीव चलाता हुआ चला जा रहा था। गांडीव चलाने वाला अर्जुन, जो कि भगवान का काम करने के लिए कटिबद्ध हुआ था, भगवान की सहायता पाने का अधिकारी हुआ। यह तो हुई पुराने जमाने की बात। संघर शरण गच्छामी।
नए जमाने में भगवान की आज्ञानुसार गौतम बुद्ध जब पूजा पर से उठे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपका प्यार पाने के लिए जीवन में क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि दो ही काम है, तीसरा काम मैंने किसी को नहीं सौंपा, एक धर्म की स्थापना और दूसरा पाप का निष्कासन। इसलिए तू धर्म की स्थापना कर और लोगों से कह, बुद्धम शरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी, संघ शरण गच्छामी। धर्म के इस्तेमाल से संघबद्ध हो जाएं और बुद्धि की, अकी की सहायता से, विवेक की सहायता से अज्ञान और अनाचार, छोटापन और मूर्मान्यताओं, परंपराओं के पीछे भागने वाली दुनिया को, हे बुद्ध,
तुम कहो बुद्धम शरण गच्छामी, बुद्धि की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा और विवेक के विरुद्ध की सब बातों को उखाड़ कर फेंक दूंगा।
लोगों से कहो कि हे अच्छे अनुचरों,
नेक आदमियों, संघबद्ध हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, साधन भगवान देंगे। बुद्ध ने भगवान की बात मान ली। बुद्धम शरण गच्छामी, धम्म शरण गच्छामी, संघ शरण गच्छामी का संदेश लेकर के भगवान की आज्ञा से भगवान बुद्ध चले गए और वैर की, हिंसा की और नर आहुति वाली अंत परंपरा जो देश में छाई हुई थी उससे लड़ने के लिए बुद्ध ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। भगवान बुद्ध अपने जमाने के बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे। बुद्ध अकेले जंगल में बैठे हुए थे, कमजोर थे।
उन्होंने भगवान से कहा कि आपने इतना बड़ा काम मुझे सौंपा है, इसे मैं किस तरीके से पूरा कर सकूंगा? मेरे पास रुपया कहाँ है, पैसा कहाँ है, मेरे पास साधन कहाँ है? भगवान ने कहा कि तू आगे चल और पीछे से मैं रुपया लेकर आया।
और मित्रों, सम्राट अशोक आया।
उसने कहा कि आप हैं भगवान बुद्ध?
उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान की आज्ञानुसार, भगवान की इच्छानुसार मैंने अपने जीवन को हथेली पर रखा और अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया।
उसने कहा कि फिर आपको सामान की जरूरत है ना? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे चीजें चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे अमुक अमुक चीजें चाहिए। अशोक ने कहा कि भगवान का सब सामान आपके चरणों पर समर्पित है, सारी की सारी चीजें, धन दौलत सब उनके पास आ गई।
भगवान बुद्ध ने अजंता एलोरा की गुफाओं से लेकर 2.5 लाख शिष्यों के माध्यम से एशिया में और सारे विश्व में क्रांति मचा दी। भगवान सम्राट अशोक के रूप में उनकी सहायता कर रहे थे। समुद्र मंथन।
एक बार देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान की इच्छा और आज्ञा से पुरुषार्थ किया जाना चाहिए और उस वसुधा में जिसमें अनेक रत्न भरे पड़े हैं उनको निकाला जाना चाहिए। देवताओं ने कहा कि हम हार जाएंगे और असुरों ने भी कहा कि हम हार जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। समुद्र मंथन होने लगा और मंदराचल पर्वत नीचे समुद्र की तलहटी में चला गया।
देवता चिल्लाए, अरे महाराज जी,
मंदराचल पहाड़ जिससे हम रई का काम ले रहे थे अब डूबा और हमारा काम फेल हुआ। भगवान ने कहा, कैसे फेल होगा, मैं आता हूँ। और भगवान कछुए का रूप बनाकर आए और अपनी पीठ के ऊपर पहाड़ को उठा लिया और समुद्र मंथन होता रहा, समुद्र से रत्न निकाले जाते रहे।
शंकर दिग्विजय। मित्रों,
इसी तरह आद्य शंकराचार्य भगवान का काम करने के लिए रवाना हुए और संसार दिग्विजय की उनकी यात्रा आरंभ हो गई।
शंकराचार्य ने कहा, भगवान,
मैं बीमार आदमी हूँ और मैं छोकरा हूँ, 22 साल का हूँ और देखिए अभी मेरी मूंछे भी नहीं आईं और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बीमार हूँ, मेरे भगंदर का फोड़ा है, मैं कमजोर आदमी हूँ,
फिर मैं कैसे काम करूँगा? भगवान ने कहा, चल मैं आया तेरे साथ। सम्राट मांधाता को उन्होंने शंकराचार्य की सहायता के लिए भेज दिया।
मांधाता ने कहा कि आप दिग्विजय के लिए विश्व में जा रहे हैं?
उन्होंने कहा कि हाँ, जा रहा हूँ। तो आप यह मेरी सेना ले जाइए, मेरा रथ ले जाइए, आपसे शास्त्रार्थ में जो कोई मुकाबला करे उससे मुकाबला कीजिए।
ताकत में आपको धमकाना चाहे तो मेरे सैनिक उसे ठिकाने लगा देंगे। राजा मांधाता की सेना और करोड़ों का खजाना आगे आगे चला।
ध्येयनिष्ठ जीवन।
अभी तो मैं आपसे पुरानी बातें कह रहा था, अब मैं अभी की बात कहूंगा कि किस तरह मनुष्य के ऊपर भगवान की सहायता बरसती हुई चली गई और चली जानी चाहिए।
जापान में एक छोटा सा छोकरा था।
उसके जी में आया कि कमाते खाते तो सभी हैं।
U0G0C0 से छात्रवृत्ति पाने की तमन्ना सभी को रहती है,
अच्छी नौकरी की इच्छा भी सभी को रहती है, लेकिन क्या इनकी अपेक्षा भी बेहतरीन काम किया जा सकता है? क्या मनुष्य का जीवन बेहतरीन कामों के लिए नहीं मिला है?
एक छोटा सा विद्यार्थी जिसके माँ बाप दोनों मर चुके थे, अकेला रह गया था।
क्या करना चाहिए?
हमारे आपके जैसा आदमी होता तो यह ख्वाब देखता, किन ब्याह करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, किराए का घर लेना चाहिए, सिनेमा देखना चाहिए और बीबी के लिए जेवर बनाना चाहिए।
बस इन्हीं सारी ख्वाहिशों में सारी की सारी जिंदगी खत्म हो जाती है।
फिर हमारे और आपके जैसा घटिया आदमी जापान का गांधी का गावा कैसे बनता?
तमन्नाएं हों पर ऐसी जो आध्यात्मिक मनुष्यों की होती हैं। उस छोटे से बच्चे ने भी सोचा कि भगवान ने मुझे जापान की सेवा करने के लिए भेजा है, अतः मेरे जीवन का उत्तम ध्येय सेवा करना है।
कागावा ने चुना रास्ता। वह गांव गांव गया, मोहल्ले मोहल्ले गया।
उसने शहर में एक मोहल्ला ऐसा देखा जहां कोड़ी रहते थे, बीमार रहते थे, शराबी रहते थे, जुआरी रहते थे, निकम्मे लोग और वेश्याएं रहती थीं।
वहां रोज गाली गलौज और खून खच्चर होता रहता था।
सारे के सारे लोग भयानक नरक में डूबे हुए थे। उसी मोहल्ले में जाकर के उसने अपनी एक झोंपड़ी बना ली और वहीं पर लोगों का इलाज करने लगा। सारा दिन उन्हीं रोगियों के साथ बिताता, उनकी सेवा करता, बीमारों को उठाकर अस्पताल ले जाता और लोग जो दूसरी बीमारी में पड़े थे उनकी दूसरी सहायता करता।
शाम को ट्यूशन करता और 50 रुपये महीने कमा कर ले आता। बस यही उसकी कमाई थी, गुजारे का साधन था।
उस गुजारे के धन के सहारे कागावा सारे के सारे गांव की सेवा करने लगा, दीन जनों की सेवा करने लगा, दरिद्र नारायण की सेवा में और भी लगे। एक दिन उसके पास एक छोकरी आए और कहने लगी कि कागावा, आप रोज कहाँ जाते हैं? उसने कहा कि मैं तो एक गंदे मोहल्ले में रहता हूँ और जो दुखी हैं उनकी सेवा करता हूँ, उन्हीं में तो भगवान है। भगवान हाथ पसारता है और यह कहता है कि मैं गरीब के रूप में हूँ, पिछड़े लोगों के रूप में हूँ, दरिद्र के रूप में हूँ, मैं अज्ञानियों के रूप में हूँ।
आओ, जिसके भीतर भगवान है उसकी सेवा करो, सहायता करो।
मैंने उस भगवान को गंदे वाले मोहल्ले में देखा और सेवा करने के लिए चला गया। उस छोकरी ने कहा कि क्या सेवा करने का मौका हमें भी मिलेगा? उसने कहा कि हाँ, तुम भी चल सकती हो। उसने देखा कि फूस की झोंपड़ी में पड़ा हुआ एक सैनिक कैसे दिन रात दीन दुखियों की सेवा में जुटा रहता है। उस छोकरी ने कहा कि तुमको दीन दुखियों की सेवा में क्या मजा आता है? कागावा ने कहा कि इस मजे को और इस आनंद को चख लेना हर आदमी का काम नहीं है।
क्यों?
क्योंकि हर आदमी इंद्रियों का गुलाम है, वासनाओं का गुलाम है, इसीलिए उसे चीजें चाहिए। पर यह आनंद सेवा का आनंद है, त्याग का आनंद है, महात्मा का आनंद है, जो किसी किसी भाग्यवान के ही हिस्से में आता है, और वह भाग्यवान में हूँ जो सेवा में अपने जीवन को लगाए हुए है। छोकरी ने कहा कि मैं भी अपना जीवन इसी काम में लगाना चाहूंगी, और वह लड़की भी कागावा के साथ हो गई।
जापान का गांधी बन गया कागावा। मित्रों,
कागावा की वजह से जापान में समाज सेवा का बड़ा भारी काम होने लगा। अब मैं आपसे उसकी लंबी कहानी कहाँ तक कहूँ, बस अंत में यही कह सकता हूँ कि कागावा जापान का गांधी हो गया। हर आदमी यही कहता कि भगवान अगर जिंदा है तो कागावा के रूप में।
कागावा कौन?
जो सेवा के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर सका, उसका नाम भगवान है। लोग आते उस भगवान के दर्शन करने के लिए, उसके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए।
जापान का गांधी कागावा अपने देश का कितना सुधार कर सका, जापान की गवर्नमेंट को कितना प्रभावित कर सका, जापान की जनता के हृदय पर अपनी कितनी छाप डाल सका, यह बात वहां का बच्चा बच्चा जानता है।
छोटा सा मामूली विद्यार्थी, जिसकी न माँ थी न बाप था, जिसके पास न मकान था न जायदाद थी, लेकिन जब महानता मनुष्य के भीतर आती है, तब भगवान की दौलत और भगवान का प्यार और भगवान का सहयोग अनायास ही न जाने कहाँ से बरसता हुआ चला जाता है।
क्रमशः एक असामान्य व्यक्ति। मित्रों, राजस्थान का 22-23 साल का एक छोकरा संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा हुआ था।
18 साल की उम्र में उसका ब्याह हुआ और 22 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया।
4 साल तक दोनों साथ रहे थे, अतः जब उसकी याद आती तो कलेजा थामकर रह जाता।
इस उम्र में आपकी बीबी का देहांत होते ही 3-4 दिन बाद से ही दोबारा ब्याह कहाँ करना चाहिए तथा दूसरी और कहाँ से लानी चाहिए,
यही ताना बाना बुनने लगते, लेकिन उस आदमी की सोच अलग थी।
उस व्यक्ति ने विचार किया कि जिस महिला ने मेरी जिंदगी में 4 साल आनंद और उल्लास के साथ व्यतीत किए, उसका एहसान मुझे किस तरीके से चुकाना चाहिए। यह महान व्यक्तियों के सोचने का ढंग है। हमारे आपके जैसा होता तो बिना बोले चला जाता और पिंड बनाकर उसकी छाती पर रखता और कहता कि ले कच्चे आटे के पिंड खा ले, लेकिन उसने आटे के कच्चे पिंड खिलाने की अपेक्षा दूसरे तरीके अख्तियार किए और वहां चला गया, जिस गांव से वह महिला आई थी। गांव के लोगों से उसने कहा कि आप लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, आप लोगों की उस छोकरी का एहसान मेरे ऊपर है।
हमारा एहसान बनाम समाज का एहसान। मित्रों,
भगवान के भक्तियों कहते हैं कि सारे समाज का एहसान हमारे ऊपर है, जबकि निकम्मे आदमी यह कहते हैं कि मेरा एहसान दूसरों के ऊपर है। जो आदमी यह मानता है कि भगवान का एहसान, समाज का एहसान हमारे ऊपर है, उसे बड़ा आदमी मानना चाहिए, लेकिन जो कहता है कि गुरुजी, माला जप करते करते एक महीना हो गया, तो क्या हो गया?
गुरुजी,
भैंस का दूध 4.5 से 5.5 किलो नहीं हुआ, और गुरुजी, नौकरी में तरक्की भी नहीं हुई।
महाराज जी,
कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि गायत्री माता नाराज हो गई हैं।
तो फिर क्या करना चाहिए?
बड़ा गजब हो गया।
गायत्री माता तो ध्यान नहीं देती और आपने जो बताया था उससे भी कोई फायदा नहीं होता।
फिर क्या कहूँ बेटे, यही कह सकता हूँ कि तू एक काम कर, लोहे की एक सलाई गरम कर और आचार्य जी के पुट्ठे पर चिपका दे। एक महीना जप कर लिया, दिन में 3 माला जप कर लिया, नौकरी में तरक्की नहीं हुई, फलाना नहीं मिला, धमाका नहीं मिला, धूर्त कहीं का। भगवान के ऊपर एहसान जताता है, आचार्य जी के ऊपर और गायत्री माता के ऊपर एहसान जताता है। अरे, एहसान से तो तू दबा हुआ है। भगवान के असंख्य एहसानों से तो तू रत्ती रत्ती दबा हुआ है। इन सारे एहसानों को भुला दिया और कहता है कि एक महीने में 3 माला जप कर लिया और मेरा यह नहीं किया, इम्तिहान में पास नहीं कराया, भैंस का दूध नहीं बढ़ाया। उल्लू कहीं का। बड़ी सोच, बड़ा चिंतन।
इस तरह मित्रों,
छोटी सोच और घटिया सोच के लोग जो अपना एहसान जताते रहते हैं, वे घटिया आदमी हैं और उन्हें भगवान की मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरे वे लोग हैं जिनके मन में आता है कि भगवान का एहसान, समाज का एहसान, माता पिता का एहसान मेरे ऊपर है और असंख्य एहसानों के तले में दबा हुआ हूँ। समझना चाहिए कि वे ऐसे आदमी हैं जिनको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं।
इनको भगवान की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत अवश्य मिलती है। यही हुआ।
वह छोकरा जो अध्यापक था वहाँ उस गांव में गया और बोला कि आपका, आपके गांव का और आपकी छोकरी का हम पर बहुत एहसान है, आप क्या करना चाहते हैं? उसने कहा कि हम अपनी सेवा देंगे और आपके गांव में रहेंगे और आपकी बच्चियों को पढ़ाएंगे, उन्हें सुसंस्कृत बनाएंगे, हम अपनी सारी जिंदगी इसी में लगाएंगे। लोगों ने कहा कि पागल है, 45 रुपये की नौकरी छोड़ेगा और यहाँ बिना कीमत के पढ़ाएगा। उनसे कहा कि यह जिंदगी नौकरी करने के लिए नहीं है।
लोकमान्य तिलक को ही लीजिए जिन्होंने 21 रुपये की नौकरी मंजूर कर ली।
लोगों ने कहा कि इतने में तुम्हें मरने के लिए कफन भी नसीब नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कफन की चिंता औरों को करनी चाहिए जिन्हें लाश संभालनी है। मुझे तो अपनी लाश संभालनी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी चिंता करने की कोई बात नहीं है।
एक और प्रमाण गोखले का। इसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने एक शिक्षा समिति बनाई और जो अध्यापक वहां रखे उन्हें 200 रुपये महीने तनख्वाह देते थे और स्वयं संचालक के रूप में 30 रुपये महीना लेते थे।
लोगों ने कहा कि आपके अध्यापक और आपके नौकर को 200 रुपये महीने मिलते हैं और आप शिक्षा समिति के मालिक, संचालक, संस्थापक हैं और इतनी कम तनख्वाह लेते हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आदमी को खर्च करने के लिए इतना ही काफी है। अध्यापकों को 200 रुपये मिलते हैं और मुझे 250 रुपये मिलने लगे तो ऐसा आदमी अपनी चाल और सेवा की छाप दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकता। तब अध्यापक भी चुपके चुपके कहेंगे कि 250 रुपये लेता है, इसलिए लंबी लंबी बातें बनाता है। कम पैसों में बच्चों का पालन कैसे किया जाता है यह पता नहीं और बड़ा आया हुकूमत चलाने वाला। ऐसे व्यक्ति भगवान बन जाते हैं।
मित्रों, महापुरुष नौकरी करने के लिए पैदा नहीं होते,
महापुरुष अपना कर्तव्य पालन करने के लिए पैदा होते हैं। छोटा वाला अध्यापक की नौकरी छोड़कर गांव में चला गया और बच्चियों एवं कन्याओं को पढ़ाने लगा।
पहले लोगों ने उसे पागल कहा, फिर उसका विरोध किया।
हर तरह की मुश्किलें उसे पार करनी पड़ी। भगवान के भक्त को हर परीक्षा पास करनी पड़ी है। उसका मखौल उड़ाया जाता है, खिल्ली उड़ाई जाती है, फिर विरोध किया जाता है। पीछे लोगों को जब मालूम पड़ता है कि उसको ताकत आने लगी है, वह अच्छे काम करने लगा है, अपने पांव जमाने लगा है, तो फिर उसके पास आने की कोशिश की जाती है। यह दूसरी वाली स्टेज है। तीसरी वाली स्टेज वह है जब दुनिया उसके सामने झुक जाती है, उसके पांव के ऊपर अपना हृदय बिछा देती है। इस तीसरी वाली स्टेज पर अध्यापक जमा हुआ पड़ा रहा, गांव का स्कूल चलता रहा, लड़कियों को बुलाता रहा और उन्हें पढ़ाता रहा। फिर क्या हुआ? हुआ यूं कि थोड़े दिन बाद लोगों ने कहा कि यह इंसान नहीं, भगवान है। इंसान वह आदमी है जो वासनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं की जंजीरों में बंधा हुआ जानवरों के तरीके से है। इंसान वह आदमी है जिसको ख्वाहिशें खा जाती हैं और भगवान वह आदमी है जिसने तृष्णाओं को, वासनाओं को छोड़ दिया और जो कर्तव्य के पीछे कटिबद्ध है। इन इंसानों का नाम भगवान है।
दैवी अनुग्रह मिला हीरालाल शास्त्री को।
लोगों ने कहा कि यह अध्यापक नहीं, भगवान है और उस भगवान के लिए लोग अपने घर से सारी की सारी चीजें उठाकर लाए।
स्कूल के लिए पहले कच्ची इमारत बनाई, पीछे पक्की इमारत बनाई गई। उसके लिए चारपाई लाई गई, नए कुर्ते बनवाए गए। मित्रों, उस भगवान का काम बढ़ता गया। राजस्थान के वनस्थली कन्या विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री का नाम आपने सुना होगा।
यह वही छोरा था जो संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा हुआ था।
जब राजस्थान बना तो लोगों ने कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लोगों ने कहा उसी भगवान को बनाया जाए। कौन से भगवान को? उसी हीरालाल शास्त्री को जो मध्यमा तक पढ़ा हुआ था और सरकारी स्कूल से सहायता पाता था।
उसी भगवान ने इस ऐतिहासिक स्कूल की स्थापना की है।
मित्रों,
मैं आपको कोई किस्से नहीं सुना रहा हूँ और न कोई दृष्टांत ही दे रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में महानताओं का समावेश कर लिया, वह इसी तरह से भगवान के प्यार और अनुग्रह और भगवान के सहयोग का अधिकारी होता चला गया। मैंने सिद्धांतों को जीवन में घोलकर पिया है।
मित्रों,
मैं अपने गुरु की आज्ञानुसार उसी रास्ते पर चलता हुआ चला गया जो कि आपको सिखाता हूँ। मैंने आध्यात्मिकता के सिद्धांतों नियमों को जीवन में घोलकर पिया है। आप लोगों ने जबान से कहा है और कान से सुना है। जबान से कहने और कान से सुनने की चीज यह नहीं है। अध्यात्म ऐसा नहीं है जिसको आप कान से सुनने के बाद अपना उद्देश्य पूरा कर सकें, और भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जिसका नाम जबान से कहने के बाद में आपका उद्देश्य पूरा हो सकता हो। इसे जीवन में साबित करना पड़ेगा।
जब आप दवा का सेवन करेंगे, दूसरी गोलियां खाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाएंगे, विटामिन बी खाएंगे, अमुक दवा खाएंगे तो बीमारी दूर होगी, आप अच्छे हो जाएंगे।
इसी तरह आध्यात्मिकता नाम लेने व सुनने की चीज नहीं है, काम में लाने की चीज है।
मित्रों,
मैं उस आध्यात्मिकता का आपसे इजहार कर रहा हूँ जिसे मेरे गुरु ने सिखाया और सारी जिंदगी उसे मैं काम में लाता रहा। काम में लाने का परिणाम यह है कि मैं छोटा सा आदमी, अदना सा इंसान लोगों की आंखों में क्या हूँ आप नहीं जानते और मैं बताना भी नहीं चाहता। मरने के बाद में, मेरे चले जाने के बाद थोड़ा इंतजार कीजिए कि वह आदमी जिसका कि हम व्याख्यान सुनने के लिए गए थे और जिस आदमी के पास शांतित कुंज में रहे थे, क्या इतना छोटा आदमी था, क्या बड़ा आदमी था, उससे आपने क्या पाया था। हाँ, हमने बहुत कुछ पाया था, न जाने आपने प्रभाव की दृष्टि से क्या क्या पाया, पैसे की दृष्टि से न जाने क्या क्या पाया।
इसका मैं आपको इजहार करूंगा।
नहीं, इजहार नहीं करूंगा।
कुछ अपवाद रूप घटनाएं। मित्रों,
मैं वह आदमी हूँ कि किसी आदमी की सेवा के लिए खड़ा हो जाऊं और मन से आशीर्वाद देने लगूं तो न जाने क्या से क्या हो जाए। इस तरह की घटनाएं तो मैं नहीं सुनाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक आध घटना बता देता हूँ।
2 वर्ष पहले मुझे भोपाल जाने का मौका मिला। वहाँ पर मेरा व्याख्यान हुआ। जब मेरा व्याख्यान हो रहा था तो एक लंबा आदमी जीप में बैठा मेरा भाषण सुन रहा था।
जब मैं चला तो बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने कहा कि क्या बात करना चाहते हो। वह बोला कि आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कि बताए न, आप क्या जानते हैं, तो क्या बात है। यह स्त्री आपकी शिष्या है। मैंने कहा, होगी, बहुत सी स्त्रियाँ मेरी शिष्या हैं, दीक्षा लेती हैं और चली जाती हैं। कोई पैसा थोड़े ही देना पड़ता है दीक्षा में। वे आती हैं और पालथी लगाकर एवं हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं, कलावा बांधकर बैठ जाती हैं, फूल चढ़ा जाती हैं और जय बोल जाती हैं। लाखों हैं और न जाने कौन कौन है। नहीं साहब, आपकी यह शिष्या मेरी धर्मपत्नी है। मुझे आपसे कुछ काम की बात कहनी है।
अच्छा, तो मैं शाम को रामचंद्रलाल एडवोकेट के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आप शाम को वहाँ आ जाना। शाम को 8:30 बजे वे अपनी जीप दौड़ाते हुए वहाँ पहुँच गए।
उन्होंने कहा कि मेरा नाम श्यामाचरण शुक्ल है। मैंने कहा कि आपका नाम तो मैंने बहुत सुन रखा था।
उन्होंने कहा कि गुरुजी,
बात यह है कि मैंने इंदिरा गांधी से कुछ वायदे किए थे।
गुरुजी,
मैंने तो अपनी सारी ताकत लगा दी, पर अब मुझे मालूम पड़ता है कि जमे हुए नेताओं को उखाड़ना हंसी खेल नहीं है।
अब मैं इंदिरा गांधी को क्या मुंह दिखाऊंगा और उनसे क्या कहूंगा।
पहले बड़ा चौड़ा सीना करके कह रहा था कि उन्हें उखाड़ फेंकूंगा, पर अब क्या करें।
गुरुजी,
आप ही बताए कि क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा है कि आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। उसने कहा है कि आचार्य जी को लोग जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वही उनकी कीमत जानते हैं। हमारे पिताजी के 2500 काम आचार्य जी की कृपा से पूरे हुए थे।
इंदौर के एक थानेदार थे, उनकी लड़की को विश्वास था कि आचार्य जी के पास चले जाओ, काम बन जाएगा। सामान्य आदमी मुख्यमंत्री बन गया।
उन्होंने कहा कि 24 दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए।
अरे बाबा,
मैं मंत्री बनाता हूँ या भगवान की बात कहता हूँ। मेरा काम मंत्री बनाना है या गायत्री का प्रचार करना है।
नहीं आचार्य जी, आप कह दीजिए कि मैं मंत्री हो जाऊं, फिर मैं देख लूंगा। अरे बाबा,
मैं कैसे कह दूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, गवर्नर नहीं हूं, कैसे कह दूं। रात को 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 4 घंटे तक वे हमारे साथ रहे, साथ में खाना खाया, जप किया।
अच्छा, अब की बार तुम मुख्यमंत्री हो जाओगे। गुरु जी, कब तक हो जाऊंगा। 3 महीने बाद हो जाओगे। सच में वह आदमी मुख्यमंत्री हो गया।
यह बात कानों कान एक से दूसरे तक फैलती चली गई।
जब मैं ग्वालियर गया तो तत्कालीन राजपुरुष मेरे आगे पीछे चलते थे, जबकि मैं राजनीति से दूर भागता हूँ।
ग्वालियर में रानी सिंधिया ने कहा कि आचार्य जी हमारे नगर में आए और उनका स्वागत नहीं हुआ, इनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, यह भला कैसे हो सकता है, हमारी बात बिगड़ जाएगी। नागरिक होने के नाते हमको भी हक है कि हम आचार्य जी का स्वागत करें। मैंने कहा कि अरे बाबा,
मैं तो हर साल आता हूँ। अन्य ऐसों की अभिव्यक्ति। मित्रों,
इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को पता चला कि आचार्य जी हमारे प्रांत में आए हैं। कानों कान बात कहां से कहां पहुंचती है।
उन्होंने कहा कि मैं आचार्य जी का व्याख्यान सुनना चाहता हूं। व्याख्यान सुनना चाहते हो तो तुम भी सुन लो।
मेरे पास खबर आई कि आपका भाषण सुखाड़िया जी 15 मिनट सुनना चाहते हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। किसी ने इनको बताया है कि आपने आचार्य जी का दर्शन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। सुखाड़िया जी आए और उन्होंने कहा कि 15 मिनट आपका भाषण सुनूंगा।
मैंने कहा कि बैठ जाइए, आप भी सुन लीजिए। 15 मिनट उन्होंने मेरा भाषण सुना।
15 मिनट बाद वे स्वयं हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरे लायक कोई काम नहीं बताएंगे क्या। वक्त आने पर बताऊंगा, अभी क्या बताऊं, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, यही क्या कम है। आपके ऊपर वही जिम्मेदारियां काफी हैं। यह घटना नहीं सुना रहा हूं आपको, घटनाएं तो बहुत हैं जो ऊंचे तबके से लेकर साधारण जन तक की हमारे यहां पड़ी हुई हैं। U0P0 के गवर्नर विश्वनाथ दास बोलते थे कि हमें आचार्य जी से मिलना है, उनके बारे में हमें बहुत जानकारी है। लोगों ने कहा कि वे आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं और आपसे कुछ बात करेंगे। इंतजाम कर दिया, मथुरा के नागरिकों को बुलाकर बिठा दिया और 100-200 आदमियों के लिए चाय पार्टी का इंतजाम कर दिया।
विश्वनाथ दास आए, उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन करने के लिए मैं मथुरा आया था, किंतु भगवान का दर्शन मैं नहीं कर सका, लेकिन एक व्यक्ति में भगवान को जीता और जागता मैं अवश्य देख सका और वे व्यक्ति हैं आचार्य जी।
विश्वनाथ दास ने कहा कि बहुत लोगों ने बहुत आदमियों की सेवा की है, लेकिन उतनी सेवा एक आदमी ने अकेले की है और उस आदमी का नाम है आचार्य जी। लोगों ने उनके कान खींचे कि आपने एक आदमी को एक भगवान कैसे कह दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरे हृदय की सच्ची अनुभूति है, जैसा मैंने अनुभव किया वही बात कही कि यह व्यक्ति वैसा ही है।
क्षुद्र इच्छाएं छोटी तमन्नाएं। मित्रों,
यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ,
इसलिए कह रहा हूँ कि आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
आप कहेंगे कि हमको इन बातों से क्या फायदा, आप तो हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। हमारे 2 लड़कियां हैं, एक लड़का कर दीजिए।
मैं कर दूंगा, आप विश्वास रखिए, आपको लड़का होगा।
आपके घुटने में दर्द होता है, उसको भी बंद कर दूंगा।
आप यकीन रखिए, घुटने का दर्द बंद हो जाएगा।
फिर आप कहेंगे कान में दर्द होता है, फिर आप कहेंगे कि महाराज जी बच्चा नहीं होता था, हो गया। अब ऐसा कर दीजिए कि मेरी लड़की विधवा है, उसका इंतजाम कर दीजिए।
अरे बाबा, एक बार आशीर्वाद दे दिया, अब क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है।
सारी दुनिया में मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या। अगर आप अपनी ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी तमन्नाएं ही मेरे सामने रखते रहे और अपने नियम व्रत अपने मन से निकाल दिए, तो न कोई आपको प्रसन्नता होगी और न कोई शांति होगी और मेरे संपर्क का लाभ आप जरा भी नहीं उठा पाएंगे। मैं तो आपको बड़े रास्ते पर, महानता के रास्ते पर चलाना चाहता था और यह नहीं चाहता था कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार मुझसे कहें। आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मेरा मन बहुत ही कोमल और मुलायम है। मुझे अपने दरवाजे पर आने वाले का वजन और एहसान याद रहता है। कबूतर और कबूतरी के तरीके से हम और हमारी धर्मपत्नी सारी जिंदगी यही काम करते रहे हैं। हमने दरवाजे पर आने वाले की इज्जत का और भावना का बड़ा ख्याल रखा है,
आगे भी ख्याल रखेंगे।
जब तक जिंदा रहना है, अपनी आदत और स्वभाव से बाज नहीं आने वाले हैं।
आप यकीन रखिए, हम जरूर सहायता करेंगे। मन की शुद्धि ही समस्याओं का हल। मित्रों, आपकी जरूरत को पूरा भी कर दे तो आपको शक्ति मिल सकती है, लेकिन इससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।
आपकी कहानी तो वही चूहे वाली ही बनी रहेगी, जिसे एक संत ने दया करके उसे पहले बिल्ली से बचने के लिए बिल्ली बना दिया था। बिल्ली को जब कुत्ता तंग करने लगा तो उसे कुत्ता बना दिया, कुत्ते से लकड़बग्घा, लकड़बग्घे से शेर बना दिया। शेर को जब शिकारियों का डर सताने लगा तो संत ने उसे फिर से चूहा बना दिया और कहा कि अब मस्त रहा कर और मौज किया कर।
मित्रों,
जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों हर जगह खड़ी रहती हैं।
आज आपकी समस्या एक है, कल 5 हो जाएंगी, फिर 25 हो जाएंगी। मैं 25 हल कर दूंगा तो कल आप 500 लेकर आएंगे।
दुनिया में समस्याएं खत्म नहीं हो सकती और न हल हो सकती हैं।
समस्याएं हल होने का यदि कोई उपाय है तो वह यह कि आदमी अपने मन को और आत्मा को शुद्ध कर डाले और अपने विचारों का परिवर्तन कर ले, विचार करने की शैली को, दृष्टिकोण को सही कर ले।
इस तरह से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके वहम को मिटाने को बुलाया।
इसलिए मित्रों,
प्रथम दिन आपको यही शिक्षण दिया था और आज अंतिम दिन भी यही शिक्षण दिया है। मैंने आज आपको इसलिए बुलाया था कि मैं आपकी अंतश्चेतना के कपाट खोल दूं और ऐसा शिक्षण दूं जैसा कि अध्यात्मवेता हमेशा से अपने शिष्यों को देते रहे हैं। मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया कि आपको आपके रास्ते के बारे में बता दूं। आप गुमराह हो गए थे, इसलिए आपको बुलाया कि आपके लक्ष्य के बारे में फिर जानकारी दे दूं। इसलिए भी बुलाया कि आपके मन में यह वहम जो जम गया है कि भगवान का प्यार और भगवान का अनुग्रह और भगवान की शक्ति पाने के लिए हम छोटे छोटे कर्मकांड और क्रियाकृत्य करने के बाद उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने वाले को भगवान का प्रताप दिखाई पड़ता है और भगवान का स्नेह मिलने का हक मिल जाता है।
मित्रों,
मैंने आपके मन में से वे चीजें निकालने के लिए बुलाया और साथ ही आपको इसलिए बुलाया कि भगवान ने आपको पुकारा है। मैंने आपको इसलिए भी बुलाया है कि आपसे यह कहूं कि आप में से हर आदमी किसी भी मायने में बहुत अच्छा, बहुत कौशलपूर्ण और बहुत ही ऊंचे पद का आदमी है। आपके ऊपर मलिनताएं जम गई हैं, मैल जम गई है और आपके ऊपर कषाय कलमश की परतें जम गई हैं, इसलिए आपको अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहा।
अगर आपको अपने स्वरूप का ध्यान रहा होता तो आप में से हर आदमी आचार्य श्रीराम शर्मा होता, आप में से हर आदमी महात्मा गांधी होता, बुद्ध होता, कबीर होता, दादू होता, नानक होता और जमनालाल होता और न जाने क्या क्या होता, दयानंद होता, शंकराचार्य होता।
आपको खाना भी मिल जाता, कपड़ा भी मिल जाता, रोटियां भी मिल जाती, लेकिन रोटियां पाने के बाद और कपड़े पहनने के पश्चात आपने समाज की सेवा करने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कृति के लिए जो रोल अदा किया होता तो मजा आ जाता।
जीवन के उद्देश्य का आपको भान कराया है। मित्रों, आप काम करते गए और रोटी कमाते गए, लेकिन जीवन का उद्देश्य भूल गए।
मैंने यही याद दिलाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और अपना सारा का सारा समय, अपना मन और अपनी सारी की सारी भावनाएं इकट्ठी की और आपके ऊपर छाया रहा। इन चार दिनों में मैंने व्याख्यान भी दिए, लेकिन व्याख्यानों का कोई असर आपके ऊपर होने वाला था इस पर मैं यकीन नहीं करता। फिर भी मैं आपके ऊपर छाया रहा हूँ और सारे दिन आपको घेर कर रखा है और आपके दिमाग, मन और बुद्धि पर छाया रहा हूँ। इन चार दिनों में मैंने आपसे हाथ जोड़कर बहुत कुछ कहा है, अनुरोध किया है और प्रार्थना की है। जब आप सोए रहे हैं अथवा आप बीसियों काम करते रहे हैं, तब मैं आपके पीछे पीछे अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, अंतश्चेतना के द्वारा लगा रहा हूँ और मैंने आप में से हर आदमी को यह कहा है कि मित्रों, आप उनके तरीके से न चलिए जिनको अपने बच्चा पैदा करने के लिए जानवरों के तरीके से जिंदा रहना होता है। आपको ऊंचे और अच्छे काम के लिए जिंदा रहना चाहिए, यह मैंने आपसे बार बार कहा है। साथ ही साथ यह भी बार बार कहा है कि आप ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं कि जिस जमाने में मनुष्य जाति को आप जैसे लोगों की सेवा सहायता की बहुत सख्त जरूरत है। इस समय आदमी किस कदर गिर गया है, मैं क्या कह सकता हूँ। आदमी ने अपने आप को भुला दिया है, मैं क्या कह सकता हूँ। कीचड़ में गिरा आज का घटिया इंसान।
साथियों,
इतिहास साक्षी है कि कहीं भी कभी भी ऐसा गंदा जमाना नहीं आया था कि जब आदमी अपने आप को भूल गया हो, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों से इतना पिछड़ गया हो। आदमी इतना पढ़ गया, मुबारक, आदमी को अंग्रेजी बोलना आ गया, मुबारक, आदमी के पास पैसा हो गया, मुबारक, लेकिन आदमी आज जितना घटिया दिखाई पड़ता है, इतिहास में इतना घटिया आदमी कभी नहीं हुआ।
ये घटिया आदमी मुसीबतें पैदा करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे।
ये घटिया आदमी समाज में विद्रोह पैदा करेंगे, अशांति पैदा करेंगे और समाज में क्लेश पैदा करेंगे। इसलिए इस कीचड़ में गिरे हुए इंसान को भावनात्मक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए भगवान ने आपको पुकारा है,
मानवता ने आपको पुकारा है, संस्कृति ने आपको पुकारा है, देश ने आपको पुकारा है, धर्म ने आपको पुकारा है।
इस पुकार को क्या आप कानों में उंगलियां डालकर अनसुनी कर देंगे और क्या आप केवल पेट के लिए ही जिंदा रहेंगे? क्या आपके अपने विचारों का, सारी की सारी आकांक्षाओं का केंद्र बच्चा पैदा करना ही बना रहेगा? क्या आपके सामने अपना परिवार और धन के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आएगी?
आपको आनी चाहिए।
मेरा पूरा पूरा मन है कि आपके अंदर ऐसी स्फुरना पैदा होनी चाहिए जो आपका कल्याण करे और सारे समाज का कल्याण करे।
मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
बस इसी प्रेरणा को पैदा करने के लिए मैंने आपको बुलाया और बहुत प्रार्थना की।
प्रार्थना करने के बाद फिर से आपको याद दिलाता हूँ।
दोबारा हमारा और आपका कब मिलन होगा, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मैं हिमालय चला जाऊं और फिर मेरा आपका मिलना न हो सके और ऐसा दबाव आपके ऊपर न डाल सकूं। यद्यपि आप ऐसा ख्याल मत कीजिए कि इन्होंने जो हमसे आज्ञा या अनुरोध किए हैं, इनको हम नहीं मानेंगे तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम इनका कहना नहीं मानेंगे तो देखें ये हमारा क्या कर लेंगे।
बेटे,
मैं आपका बहुत कुछ कर लूंगा, मुझे कसम है, मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं। आप छोड़कर देख लीजिए और फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे छोड़ते हैं मुझे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
वाराह अवतार धरती पर आए।
एक बार ऐसा हुआ कि भगवान वाराह के रूप में धरती पर आए।
उनने हिरण्याक्ष राक्षस को, जो पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, लड़ाई में मार डाला और पृथ्वी को छुड़ा लिया। भगवान वाराह ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया और दुनिया में शांति स्थापित कर दी।
अब वाराह भगवान ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। वे धरती पर घूमने लगे, फिर मन में आया कि शादी कर लेनी चाहिए, सो उन्हें एक सुंदर सी मोटी सुअरिया से विवाह कर लिया।
फिर उससे बच्चे पैदा हुए, बच्चे के बच्चे पैदा हुए। भगवान बैठे रहते और बच्चों का सिलसिला चलता रहा। भगवान वाराह यहीं रहने लगे।
कथा प्रवाह अगले अंक में जारी।
क्रमशः भगवान धरती पर ठहर गए। मित्रों, वाराह भगवान को पृथ्वी पर रहते हुए बहुत दिन हो गए।
उधर विष्णुलोक में खबर पड़ी कि बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं। इनमें साइन नहीं हो रहे हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, सब काम रुके पड़े हैं, पानी नहीं बरस रहा है, काम हर्ज हो रहा है, कौन हुक्म दे कि पानी कहाँ बरसाया जाएगा, किसको नरक में डाला जाएगा,
किसको स्वर्ग में डाला जाएगा,
सारा काम चौपट हुआ जा रहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि बिना मिनिस्टर के साइन के मैं कब तक काम चलाऊंगा। वाराह भगवान के पास धरती पर खबर भेजी गई कि भगवान,
आप अपनी पोस्ट पर पधारिए, अपना काम धंधा कीजिए,
स्वर्गलोक को चलिए।
उन्होंने कहा कि हमको नहीं जाना है। गणेश जी आए और बोले कि चलिए, आपको विष्णुलोक में बुलाया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते। ब्रह्मा जी आए और बोले कि चलिए, वहाँ आपकी बहुत जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते। सूर्यनारायण जी आए और कहा कि बहुत दिन हो गए, आप जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया, अब आपका मूल उद्देश्य है वह काम करने चलिए ना। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते, आप भी उन्हीं की तरह हैं।
देवता बहुत परेशान हो गए।
उन्होंने कहा कि मनुष्यों की भांति वे भी जंजाल में फंस गए हैं, क्या करना चाहिए।
शंकर जी ने कहा, अच्छा ठहर जा, मैं जाता हूँ। बस शंकर भगवान एक लंबा वाला त्रिशूल लेकर के वहां गए जहां वाराह बैठे हुए थे। बच्चे कच्चे बैठे हुए थे, चारों ओर वाराहिनियां बैठी हुई थी।
बस खटाक से उन्होंने सबको मार दिया और वाराह भगवान को रस्सी से बांधकर कंधे पर लादा और विष्णुलोक में ला पटका और देवताओं से कहा कि वह लो तुम्हारे वाराह भगवान आ गए। वाराह भगवान ने हाथ जोड़े और कहा कि हाँ भाई,
गलती हो गई,
बस अब अपना काम करेंगे, जो हो गया सो हो गया। आप लोग कौन हैं? आप वाराह भगवान हैं। जमीन पर आपको जिस काम के लिए भेजा गया था, जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, वह बहुत बड़ा काम था। आपको ज्ञान की मशाल जलानी थी, क्योंकि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। मनुष्य के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, अपने बारे में अंधेरा, समाज की मान्यताओं के बारे में अंधेरा, जीवन के उद्देश्य के बारे में अंधेरा, बच्चों के लालन पालन के बारे में अंधेरा, अपनी तसल्लियों के बारे में अंधेरा, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में अंधेरा, आदमी के हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे वक्त में एक मशाल जलाने की जरूरत थी, एक दीपक जलाने की जरूरत, इसलिए मैं आपके पास आया और आपको बुलाया।
आज का अध्यात्म बदला जाना है। मित्रों,
मैंने आपको इसलिए भी बुलाया कि आप वाराह भगवान हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और आपको दीपक जलाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए,
रोटी भी खानी चाहिए।
मैं कब कहता हूँ कि रोटी नहीं खानी चाहिए और बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, लेकिन रोटी खाने और बच्चे पैदा करने के अलावा भी आपके मन में इतनी शर्म और दर्द पैदा हो तो आप मेरे तरीके से समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी आज बहुत जरूरत है।
आध्यात्मिकता ही पाप को दूर करेगी।
आध्यात्मिकता ही दुनिया में शांति लाएगी, खुशियां लाएगी और दुनिया के पापों के अंगारों से पानी की तरह आपकी रक्षा करेगी, इसलिए दुनिया में आध्यात्मिकता को लाया जाना बहुत जरूरी है।
आध्यात्मिकता का स्वरूप जो आज किसी काम का नहीं रहा तो इस निकम्मे वाले, बेकार वाले अध्यात्म, बेवकूफी वाले अध्यात्म से किसी का फायदा नहीं होने वाला है।
अगर इससे किसी का फायदा है, केवल पंडों का है और किसी का फायदा नहीं है। आपका फर्ज और कर्तव्य है कि आप आज की जिम्मेदारियों को उठाएं और अपने जीवन में उस काम को करें जिस काम के लिए आपको भेजा गया है। यह भगवान का मिशन है, उत्तम मिशन है और महान मिशन है। अगले दिनों यह सारे विश्व में फैलने वाला है। आप चंद्रमा के तरीके से इस मिशन में पूरा सहयोग कर सकते हैं।
मैंने इसके बारे में आपको छोटी सी भूमिका बताई,
बचे हुए समय में समझदारी आ जाए।
मित्रों,
मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि वह अपने बचे हुए समय का ठीक से इस्तेमाल कर ले। जो समय व्यतीत हो गया सो हो गया, लेकिन जो रह गया है उसको अगर आदमी ठीक से इस्तेमाल कर ले तो राजा परीक्षित की तरह 7 दिन में ही मुक्ति का द्वार खोल सकता है। एक बात समझ में आ जाए कि मनुष्य का मन और मनुष्य की अंतरात्मा इतनी महान और इतनी विशाल है कि अगर सीप के तरीके से इसमें स्वाति बूंद के पानी का एक कण भी मिल जाए तो यह जीवन धन्य हो सकता है। आदमी के सामने एक ही समस्या है और वह है अज्ञान की। आदमी पढ़ा लिखा तो इतना है कि वह सारे के सारे काम चलाता है, पैसे कमाता है, रोटी कमाता है, व्यापार करता है, धंधा करता है और अमीर हो जाता है। वह क्या क्या नहीं करता है इन सब के लिए, लेकिन बेवकूफ भी इतना है कि इसको इस बात तक का ज्ञान नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है, किस लिए पैदा किया गया और क्या करना चाहिए। अगर उसके अंदर यह ज्ञान पैदा हो जाए, जागृत हो जाए, तो आदमी के काम करने का ढंग और विचार करने का ढंग बहुत ही श्रेष्ठ बन सकता है और मनुष्य थोड़े ही दिनों में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अज्ञान का निवारण करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना है।
अज्ञानता की मलिनता के आवरण हटें। मित्रों,
अज्ञान जो हमारे ऊपर छाया हुआ है और हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर कषाय कलमश, पाप और ताप के आवरण छाए हुए हैं, इन आवरणों को अगर हटा दिया जाए तो आत्मा का सूर्य उस तरीके से प्रकाशवान हो सकता है जिस तरीके से बादलों की घटाएं हट जाने पर अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्य की पुण्य प्रकाश भरी आभा चारों ओर फैलने लगती है। अतः हमारा पहला काम है अज्ञानता की मलिनता के आवरण को दूर करना। भगवान और इंसान के बीच एक छोटी सी एक इंच मोटी दीवार है, अगर इस दीवार को हटाया जा सके तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ जाएंगे और दोनों एक दूसरे के प्यार का आदान प्रदान निरंतर करते रह सकेंगे। बस अज्ञानता की इस पतली दीवार ने मनुष्य को यह विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि आदमी एक शरीर है, आदमी एक कीड़ा है, एक जानवर है और जानवरों को जैसा जीना चाहिए उस तरह से हम अपनी जिंदगी जिएं। यही विचार हमारे मन से लेकर रोम रोम में आच्छादित है। हमारी सारी की सारी गतिविधियां कीड़े मकोड़े के तरीके से, जानवरों के तरीके से, बिल्ली और बंदरों के तरीके से हैं। पेट पालना और बच्चे पैदा करना, यही दो उद्देश्य इनके सामने रहते हैं। वासना और तृष्णा, इन दोनों के गुलाम सारे के सारे प्राणी हैं। इंसान और जानवर में फर्क करना है तो उस दीवार को, जो कि मनुष्य और भगवान के बीच में खड़ी कर दी गई है, गिरा दिया जाए। यदि इतना किया जा सके तो आनंद और उल्लास की धाराएं जीवन में प्रवाहित हो सकती हैं।
जिन खोजा तिन पाइया। मित्रों,
क्रियाकृतियों के, कर्मकांडों के फल नगण्य हैं। सारे के सारे फल जो मनुष्य के जीवन में स्थापित होते हैं, उसकी विचारणा पर टिके हुए हैं। विचारणाएं मनुष्य की ऊंची हों, तब छोटी से छोटी क्रिया से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। मनुष्य की क्रियाएं पहाड़ के बराबर हों और उसकी भावनाएं नगण्य हों तो वे क्रियाएं कुछ काम में नहीं आ सकती। क्रियाओं की कीमत राय के बराबर है।
एक आदमी था, नाव में बैठकर समुद्र का बहुत लंबा चौड़ा सफर करके आया। वहीं समुद्र किनारे पंडुब्बा रहता था। वह रोज समुद्र में जाता और 5-25 मोती ले आता।
लंबे चौड़े समुद्र को पार करने वाला वह आदमी पानी में डुबकी लगाने वाले पंडुब्बे के पास आया और उससे पूछा कि भाई साहब,
हमने सारा समुद्र घूम लिया पर एक भी मोती हमारे हाथ नहीं लगा।
तुम यहाँ रहते हो और मोती बीम लाते हो, इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि भाई साहब, इसका एक ही उत्तर है, आप बाहर ही बाहर समुद्र की सतह के ऊपर घूमते रहते हैं और भीतर प्रवेश नहीं करते। अगर आपने समुद्र के भीतर गर्भ में प्रवेश करने की हिम्मत की होती और साहस दिखाया होता तो आपको भी मेरे तरीके से मोती मिल जाते, जैसे कि मैं रोज ले आता हूँ।
मैं समुद्र में घुस जाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ और अपनी जान को हथेली पर रखकर जोखिम उठाता हूँ।
इतना करने के बाद फिर कोई आदमी मोती प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है।
सिद्धांतों को भीतर तक उतारिए। मित्रों,
अध्यात्मवादी को गहरे में प्रवेश करना पड़ता है, कहने, सुनने और करने तक ये बातें सीमित नहीं है।
आपने रामायण सुन ली, ठीक किया।
आपने रामायण पढ़ना सीख लिया, यह उससे भी अच्छा है। आपने गोवर्धन की परिक्रमा लगा ली, यह उससे भी अच्छा काम कर लिया। ये सभी काम अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन ये सब काम करने पर भी आप अध्यात्मवादी नहीं हो सकते और आध्यात्मिकता का लाभ नहीं उठा सकते। आध्यात्मिकता का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि उन विचारों को और उन सिद्धांतों को, जो हमको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दें, तो ही हम अध्यात्म के अधिकारी हो सकते हैं।
हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बेला। मित्रों,
मेरे जीवन में यही हुआ। मेरे गुरु जब हमारे जीवन में पहली बार आए तो उनने मेरे अंतरंग के कपाट खोल दिए।
4 दिन मेरे जीवन की अभूतपूर्व घटना है, जिनको मैं सदा याद रखूंगा, भुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया, बूढ़े आदमी को जवान बना दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया।
आज से 10 साल पहले दोबारा अपने गुरु के पास जाना पड़ा। मेरे गुरुदेव हिमालय पर जहाँ रहते हैं, वहाँ मैं 4 दिन तक रहा और ज्ञान का अमृत पिया। 4-4 दिन 2 बार अमृत पीकर के मैं निहाल हो गया और अब न जाने में क्या करने के लिए जा रहा हूँ। वह अमृत जो मैंने 4 दिनों में पहली बार पिया था और फिर 4 दिन अपने गुरु के पास रहकर दोबारा पिया था, उनमें से एक 45 साल पूर्व था और दूसरा 10 साल पूर्व था। ये दोनों मेरे सौभाग्य के दिन हैं जिनको मैं याद करता रहूंगा, इन्हें कभी भूलूंगा नहीं।
आदमी अपना जन्मदिन मनाते हैं कि हम 29 दिसंबर को पैदा हुए थे।
खुशियां मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और गीत गाते हैं, लोगों को दावत देते हैं और कहते हैं कि आज हमारा 28वां जन्मदिन है।
आज से 28 वर्ष पहले हम 29 नवंबर को पैदा हुए। आइए गाना गाएं, खुशी मनाएं और सिनेमा देखें। आत्मा का रस निचोड़कर देना चाहता हूं। मित्रों,
मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन वह है जिसमें कि छोटे से नगण्य से इंसान को भगवान की तरफ चलने के लिए जो राह मिलनी चाहिए उस रास्ते पर चला दिया गया। अपने गुरु के पास 4-4 दिन रहकर जो मैंने ज्ञानामृत पिया, उसी घटना की पुनरावृत्ति यह शिविर है जिसमें कि मैंने आपको बुलाया। ठीक उसी तरह के ये 4 दिन हैं जैसे कि मेरे जीवन में घटित हुए। मेरे गुरु ने अपनी वाणी, अपनी आत्मा का रस निचोड़ करके मुझे पिलाया और मैं चाहता हूँ कि अपनी आत्मा का रस इन 4 दिनों में आपको निचोड़ करके पिला दूँ। यह शिविर आपके जीवन में ऐतिहासिक घटना बनकर के रहेगा कि हम आचार्य जी के पास गए थे और उन्होंने हमको कुछ कहा था। मैं व्याख्यान करने वाला व्यक्ति नहीं और न ही मैं व्याख्यानों पर यकीन करता हूँ।
रोज रामायण सम्मेलन होते हैं, गीता सम्मेलन होते हैं, रोज भागवत कथाएं होती हैं। यदि इनका कुछ प्रभाव रहा होता तो हर साल एक गांव में से एक एक अर्जुन निकलता और अब तक तो 10-20 अर्जुन सामने आ ही गए होते।
रोज होने वाले गीता सम्मेलनों में से एक एक गांव से एक एक अर्जुन निकलता तो अब तक जितने सम्मेलन हुए हैं तो उनमें से 1-2 लाख अर्जुन सामने आ गए होते और गीता का अमृत पीकर वह काम करने लगे होते जो अर्जुन ने किया था। इसीलिए व्याख्यानों पर से मेरा यकीन कम होने लगा है और मैं सोचने लगा हूँ कि बहुत से ऐसे बेकार आदमी हैं जिनको कहने का हक नहीं है और जिनको सुनने का हक नहीं है, लेकिन वे कहने और सुनाने की आदत को अपने धंधे के रूप में, अपनी तारीफ के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। वे दुनिया का कोई भला नहीं कर रहे हैं, वरन दुनिया का समय बर्बाद कर रहे हैं। अब मेरा व्याख्यानों पर से और लेखों पर से दिन दिन यकीन कम होता जा रहा है। मेरा विश्वास नहीं है लिखने व बोलने पर।
मित्रों,
पुराने जमाने में एक बात थी कि ऋषि ने जो एक बात लिख दी, लोगों ने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस खत्म हो गई।
शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र को नहीं मानोगे
तो आपके लिए शास्त्र प्रमाण है। ऋषि ने लिख दिया, महापुरुष ने लिख दिया, आदि पुरुष ने लिख दिया और इस जिम्मेदारी के साथ लिख दिया कि मेरा वचन और मेरी वाणी लाखों करोड़ों मनुष्यों के जीवन को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ कलम उठानी चाहिए। जिनके ऊपर उत्तरदायित्व भरा हुआ पड़ा था, वे आदमी एक एक अक्षर लिखते हुए कांपते जाते थे और भगवान को मनाते जाते थे कि भगवान, ऐसा कोई शब्द मेरी कलम से न लिखा जाए जिसके द्वारा जनता का कोई अहित होता हो या जनता गुमराह होती हो। अब तो हमारा लिखने का धंधा है और हम पेशेवर लोग हैं, चाहे जो कुछ लिखवा लीजिए। अभी हमसे इंडिकेट के बारे में लिखवा लीजिए, सिंडिकेट के बारे में लिखवा लीजिए अथवा उसके विपक्ष में लिखवा लीजिए। अभी हम जनसंघ के खिलाफ ऐसा लेख लिख दे कि जनसंघ वाले को नानी याद आ जाए।
धंधा है हमारा, इसलिए धंधे के रूप में आदमी ने लिखना शुरू कर दिया और धंधे के रूप में आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा यकीन अब लिखने और बोलने से हटता जाता है।
उन्नयन की एक यात्रा। मित्रों,
मैंने आपको बोलने के लिए, व्याख्यान भुनाने के लिए और आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने इसलिए बुलाया कि मैं अपनी जबान के द्वारा ही नहीं, अपनी अंतरात्मा के द्वारा कुछ काम की बातें कहूँ। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अपने जीवन का रस और निचोड़ और जो मेरे जीवन का निष्कर्ष है उसे बताऊं और जिस आधार पर मैं छोटा सा व्यक्ति फलता और फूलता हुआ चला गया वह आपके सामने रखूं कि एक छोटे से देहात में पैदा हुआ व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय फेम का कैसे हो गया।
अब मैं केवल भारतीय नागरिक नहीं हूं, वरन मैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हूं। सारा विश्व इस इंतजार में बैठा हुआ है कि नई फिजाएं, नई दिशाएं, नई रोशनी, नया जमाना, नया युग और नई व्यवस्था में लाने के लिए मार्गदर्शन करने वाला कौन आदमी है जो दुनिया को नया रास्ता दिलाएगा।
उन आदमियों में अब मेरी गणना की जाती है। अभी आपने शायद मार्च की अखंड ज्योति में M0 एंडरसन की भविष्यवाणी पढ़ी होगी। वह व्यक्ति न मुझे जानता है, न कभी हमारी जान पहचान हुई, न कभी मुलाकात हुई, न मैंने कभी देखा है, न चिट्ठी पत्री की बात हुई है, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिकता के सहारे एक भविष्यवाणी की है।
जन्म जन्मांतरों के हमारे संबंध। मित्रों,
उन्होंने कहा कि नई दुनिया को बनाने वाला एक मसीहा पैदा हो गया है। वह हिंदुस्तान में है और वह अपना काम करने लगा है। यह किसकी तरफ इशारा है, यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन वह आध्यात्मिकता का मंत्र और आध्यात्मिकता का जादू है जिसके द्वारा मैं वे शक्तियाँ प्राप्त करता हुआ चला जाता हूँ। न केवल मैंने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हल कर ला, न केवल मैंने समाज को प्रकाश दिया, न केवल मैं हिंदुस्तान का पुनर्निर्माण करने के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ, वरन दुनिया वालों को भी यह उम्मीद दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और अशांति की आग में जलते हुए लोगों,
मैं तुम्हें ठीक ठिकाने पर ले जाकर के पहुंचा दूंगा।
मैं बहुत ताकतवर और बड़ा आदमी हूँ। यह ताकत और बप्पन की निशानियाँ जो मैंने पाई और जिनके चिन्ह मैंने पाए, मैं चाहता हूँ इस चार दिन के शिविर में वह सब आपको सिखा करके जाऊं और आप सीख करके जाएं। आपके ये चार दिन बहुत कीमती हैं, आप नहीं जानते आपके और मेरे संबंध क्या हैं। आप मेरे साथ अनेक जन्मों से जुड़े हुए हैं और मैं बता सकता हूं कि मैं किस किस जन्म में आपका क्या रहा हूं। आप पहले जन्म में कौन थे और कौन से महान कार्य करने में समर्थ थे?
आप अपने आप को भूल गए।
आप अपने आप को नहीं जान सकते क्योंकि आपके ऊपर अज्ञान का आवरण इतना ज्यादा छाया हुआ है जो आपकी दूर की दृष्टि को रोकता है। आप दूर की बात नहीं देख सकते, लेकिन मैं दूर की बात को देख सकता हूँ, इसीलिए मेरे और आपके संबंध उसी प्रकार से प्रगाढ़ बने हुए हैं जैसे पहले जन्मों में थे। मेरी बात गंभीरता से सुने समझें। इसलिए जब मैं चलने लगा, विदा होने लगा, तो मेरे जी में आया कि दौलत मेरे पास इकट्ठी है वह अपने कुटुंबियों और मित्रों में बांट दूं, उनके ऊपर बिखेर दूं, इसलिए मैंने आपको इस शिविर में बुलाया।
आपको इसे तबीयत के साथ सुनना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ इसको आपको गार से सुनना चाहिए।
ऐसे नहीं जैसे कि रामायण की कथा होती रहती है और स्त्रियां बीज छीलती रहती हैं और आपस की बात कहती रहती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं। इधर रामकथा चल रही है, उधर वे अपने गोठधंधे में लगी हुई हैं। आप ऐसे मत सुनना, ऐसे सुनेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा।
मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से मेरा व्याख्यान और कथा सुनने के लिए आए, जबकि अंतिम दिन मैं अपने सारे निष्कर्ष का निचोड़ सुनाने वाला हूँ। श्रीराम द्वारा लक्ष्मण को उपदेश। मित्रों,
रावण मरने लगा तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण रावण तो मर गया, पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई।
क्या दुर्घटना हो गई?
एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दुनिया में आया और चला गया। बेचारा भूल गया, गुमराह हो गया कि उसको क्या करना चाहिए था, कहाँ चलना चाहिए था। लेकिन उसने एक मंजिल जरूरी पूरी कर ली कि व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसने एक मंजिल पूरी कर ली। छोटे से छोटा भी हर इंसान अगर चाहे तो अपने भीतर दबी हुई ताकत और दबी हुई कुव्वत और अंदर की शक्ति को आसानी से उभार सकता है, ऊंचे उठा सकता है।
आदमी भूल जाए तो बात अलग है।
रावण ने एक मंजिल पूरी कर ली कि उसने आत्मा के स्वरूप को समझा और आत्मा के स्वरूप को समझ करके उसने अपनी शक्ति, अपना स्वरूप और अपना वर्चस्व जान लिया और उसको बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की और वे चीजें बढ़ती हुई चली गईं।
अंदर की शक्ति को जाना था रावण ने। रावण बहुत ताकतवर था। उसकी सारी की सारी लंका सोने की बनी हुई थी। वह बहुत मालदार आदमी था।
वह बहुत ताकतवर और बलवान था। मन हुआ तो चला गया, देवताओं को पकड़ लाया, अमुक को पकड़ लाया।
बहुत जोरदार था रावण। अपनी शक्ति को उसने बढ़ा लिया था। वह बहुत बड़ा विद्वान भी था।
जब वह वेदों का अनुवाद करने के लिए खड़ा हो गया तो वेदों का अनुवाद कर डाला। साइंस को निकालने के लिए खड़ा हो गया तो साइंस को निकाल डाला।
रावण आधे हिस्से तक अध्यात्मवादी था।
अगर व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी शक्तियां और अपने स्वरूप के बारे में जान ले और उसको विकसित करने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं उसको आधा आध्यात्मिक कहूंगा।
रावण आधा अध्यात्मवादी था। उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया था।
रास्ता सबके लिए खुला है। इसी तरह सैंडो एक बहुत दुबला पतला छोकरा था और बहुत बीमार रहता था।
11-12 बरस का था तो उसको जुकाम रहने लगा, खांसी आती थी, लिवर बड़ा हुआ था। बाप के साथ वह ज्यूरिख अजायब घर देखने गया।
अजायब घर उसने देखा और देख करके उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये जो हमारे पूर्वजों की मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं, क्या उनकी शक्लें ऐसी ही थीं?
पिता ने कहा, हाँ बेटे, ऐसी ही थी। क्या उनकी कलाइयां ऐसी मोटी थी? उसने कहा, हाँ बेटे, ऐसी ही थी। क्या हमारे बुजुर्गों के गले और गर्दन इसी तरह मोटे थे? उसने कहा, हाँ बेटे, ऐसे ही थे।
क्या उनकी पेशानी और सीने ऐसे ही थे?
उसने कहा, हाँ, हमारे बुजुर्गों की पेशानी, मस्तक और सीने ऐसे ही जबरदस्त थे।
वे जैसे थे वैसे ही उनके स्टैच्यू बनाए गए हैं।
सैंडो ने फिर पूछा, पिताजी,
क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ, तू भी ऐसा बन सकता है। दुनिया का कोई भी एक इंसान जो काम कर सका, वह दुनिया का दूसरा इंसान भी कर सकता है। जो रास्ता एक के लिए खुला है, वह दूसरे के लिए भी खुला है। एक आदमी ने बी शून्य ए शून्य पास कर लिया, तो दूसरा आदमी भी चाहे तो बी शून्य ए शून्य पास कर सकता है।
एक आदमी ने एम जीरो ए जीरो पास कर लिया, तो दूसरा आदमी भी चाहे तो एम जीरो ए जीरो पास कर सकता है।
समय ज्यादा लग जाए या कम, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक आदमी ने जो काम कर लिया, वह दूसरे के लिए नामुमकिन नहीं है।
अंदर की सामर्थ्य से सैंडो बना पहलवान।
इस तरह से सैंडो ने कहा कि अच्छा, ये नामुमकिन नहीं है, तो मैं भी ऐसा पहलवान बन सकता हूँ।
हाँ बेटे,
अगर चाहे तो हर आदमी ठीक रास्ते पर चल सकता है। अगर व्यक्ति ठीक तरह से अपनी मंजिल बना ले और प्रोग्राम बना ले, तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान से महान कार्य कर सकता है। तू भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है।
सैंडो म्यूजियम से आया और पिता से बोला, बताइए मैं कैसे पहलवान बन जाऊं? उसके पिता ने बताया, बेटे
अपने खान पान में यह नियंत्रण करना चाहिए और अपने आहार विहार में यह नियंत्रण करना चाहिए और कसरत ऐसे करना चाहिए, विचारों का संयम ऐसे करना चाहिए।
एक प्रारंभिक ढांचा बनाकर उसके सामने रख दिया।
सैंडो उसी तरीके से काम करने लगा।
मित्रों,
शायद आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में राममूर्ति का नाम लिया जाता है,
गामा पहलवान का नाम लिया जाता है,
चंदगीराम का नाम लिया जाता है। चंद बड़े बड़े पहलवान हिंदुस्तान में मशहूर हैं। यूरोप में भी एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ था,
उसका नाम था सैंडो।
वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का पहलवान था, क्योंकि उसने अपने भीतर दबी हुई सामर्थ्य को समझा और ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया और बहुत बड़ा हो गया।
गुमराह न हो तो बना जा सकता है सामर्थ्यवान। मित्रों, रावण एक तरह का सैंडो था। उसने अपने भीतर की सामर्थ्य को समझा, उसने अपने दिमाग की कीमत को समझा और उसको विकसित किया। दिमाग को विकसित करके आदमी कितना विद्वान बन सकता है, यह बात आपको जाननी हो तो विनोबा भावे से पूछिए, जिन्होंने दुनिया की मुख्य मुख्य 23 भाषाएं सीखी हैं और अभी भी 24वीं भाषा चाइनीज सीख रहे हैं। मित्रों,
आदमी का दिमाग अनमोल है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आदमी के शरीर की शक्ति की कोई तुलना नहीं कर सकता और आत्मा के उपादान की कोई तुलना नहीं कर सकता।
जब रावण मरने लगा तो रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, रावण गुमराह आदमी था जिसने आधी मंजिल पार कर ली थी और आधी मंजिल भूल गया। आत्मा के स्वरूप को समझा, लेकिन उसने परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझा। अगर उसने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा होता तो वह विश्व का न जाने कौन रहा होता। व्यास जी, वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी उसके पीछे रह गए होते। भले आदमी को अगर जरा सी बात समझ में आ गई होती कि आत्मा परमात्मा से मिलाए जाने के लिए है, तो उसने सारी की सारी दिशाएं बदल दी होती।
उसके पास जो अक्ल थी, जो कुव्वत थी, जो दौलत थी, उसने वह सब उन कामों में खर्च कर डाली होती जिन कामों में अध्यात्मवादी खर्च किया करते हैं, तो मजा आ जाता। हमारे आपके अंदर भी है शक्ति का जखीरा।
मित्रों,
लोग भौतिक जीवन की उन्नति करने के लिए दूसरी चीजों का सहारा लिया करते हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर ऐसी कुव्वत भरी पड़ी है कि अगर हम इसको उभार सकते हों, उसको हम बढ़ा सकते हों, तो सारी की सारी नियामतें, विभूतियां जो हम बाहर से चाहते हैं, वे सब अपने भीतर से ही हमें मिल सकती हैं। लोग न जाने क्यों यह सोचते हैं कि सब चीजें बाहर हैं और हम बाहर की उन चीजों से अपना फायदा उठा सकते हैं।
मित्रों,
बाहर कोई चीज नहीं है, बाहर केवल मिट्टी और धूल है। जो कुछ है वह आदमी के भीतर है। दुनिया की दौलतें, संपदाएं, समृद्धियां और सुविधाएं लोहे के बुरादे के तरीके से हैं, जो हमेशा से उनके पास आती हैं, आती रहेंगी और जाती रहेंगी, जिनके पास आत्मा का बल, आत्मा का चुंबक जागृत और समर्थ होता है। हमने आपको इस शिविर में इसी आत्मबल को जागृत और समर्थ बनाने के लिए बुलाया है। अगर आप इतना कर सके तो आपका यहाँ आना और हमारा बुलाना सार्थक हो गया।
आज की बात समाप्त। यह प्रवचन जून 1971 का है। ॐ शान्तिः।